संस्कृते पदलालित्यम, संस्कृते चार्थ गौरवम, संस्कृते सकलम ज्ञानम, संस्कृते किम न विद्यते। सच में संस्कृत में पदलालित्य है, अर्थ का गौरव है, संस्कृत में संपूर्ण ज्ञान है, संस्कृत में क्या नहीं है अर्थात सब कुछ है। हमारे देश में जितनी भी भाषाएं हैं, सभी में संस्कृत का अंश है। हम संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करते हैं, परंतु हमें पता ही नहीं होता कि वो शब्द संस्कृत के हैं। इतनी समृद्ध भाषा है हमारी संस्कृत। ऐसी समृद्ध संस्कृत भाषा के साथ अन्य भाषाओं का क्या संबंध है, इस विषय पर हम चुभन से कार्यक्रम प्रसारित करते रहते हैं। आपको याद ही होगा, अभी कुछ दिन पहले हमने दक्षिण भारत की भाषाओं का हिंदी और संस्कृत से क्या संबंध है, इस विषय पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला ही प्रसारित की थी। दोस्तों, उसी क्रम में आज हम संस्कृत और गुजराती भाषा का सहसंबंध, इस विषय पर एक संवाद करेंगे और हमारे साथ होंगे गुजरात से डॉक्टर भाव प्रकाश महेंद्र भाई गांधी जी। आपने गुजरात लोक सेवा आयोग के द्वारा ली जाने वाली शिक्षण सेवा वर्ग 2 परीक्षा संस्कृत विषय में समग्र गुजरात में प्रथम स्थान प्राप्त किया। संप्रति आप सरकारी विनयन कॉलेज गांधीनगर में संस्कृत प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। आपको गुजरात सरकार द्वारा संस्कृत साहित्य एकेडमी की ओर से वर्ष 2014 का संस्कृत युवा गौरव पुरस्कार प्राप्त हुआ है। स्वर्णिम गुजरात संस्कृत संभाषण योजना के अंतर्गत 1,00,000 लोगों को संस्कृत सिखाने के अभियान में संयोजक के रूप में कार्य करने हेतु उन्हें श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी द्वारा सारस्वत गौरव सम्मान प्रदान किया गया। आपने 130 से अधिक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सेमिनार में शोध पत्रों की प्रस्तुति की है। अब तक आपकी 12 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। डॉक्टर भाव प्रकाश जी 500 से अधिक अभिनव सुभाषित भी बना चुके हैं। इस प्रकार उनका कवि रूप भी कम प्रशंसनीय नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे विद्वान व्यक्तित्व डॉक्टर भाव प्रकाश जी को गांधीनगर गुजरात से अपने पॉडकास्ट से जोड़ते हैं और उनसे संस्कृत और गुजराती भाषा के सहसंबंध पर जानकारी लेते हैं। हाँ जी, नमस्ते सर।
नमस्ते।
हाँ जी, चुभन पर आपका अभिनंदन है सर। और सर, जैसा मैं शुरुआत यहीं से करना चाहूंगी कि आपका जन्म तो गुजरात राज्य के सूरत में हुआ और प्रारंभिक शिक्षा भी आपने गुजरात में ही ली, तो उसके बाद आप मेरठ और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से भी आपने शिक्षा प्राप्त की, ऐसा क्यों? क्या संस्कृत का गुजरात में मतलब इतनी ज्यादा आपको दिक्कत आई वहां पे पढ़ाई करने में संस्कृत की? संस्कृत का क्या स्थान है गुजरात में?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वास्तव में मेरे पिताजी वैसे तो वो सचिवालय में कार्य कर रहे थे।
जी जी।
और सचिवालय में अच्छे पद पर विराजमान थे, लेकिन शुरू से ही संस्कृत के प्रति और वेदों के प्रति हमारी आस्था रही है।
जी।
तो पिताजी ने चाहा कि इनको गुरुकुल शिक्षा पद्धति के माध्यम से, जैसे रामकृष्ण हमारे जो पूर्वज हैं,
जी,
वो
जी,
जिस माध्यम से पढ़े हुए हैं उसी माध्यम से मुझे अपने बेटे को पढ़ाना है।
जी,
तो उस तरह ढूंढते ढूंढते उनको जो मेरठ में गुरुकुल प्रभात आश्रम है वो बहुत उपयुक्त जगह लगी और वहां पर उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए भेजा।
अच्छा जी, मतलब ये वजह थी कि आप उस तरह से पढ़ना चाहते थे जैसे राम और कृष्ण जी। हम लोग सर वहाँ उज्जैन गए थे, शायद उस कॉन्फ्रेंस में आप भी थे।
हाँ जी, बिल्कुल
जी। वहां पर कैसे देखिए, हम लोग देखे थे वहां पर कैसे कृष्ण जी आकर और बलराम पढ़ते थे, तो बहुत जी। और सर, आज हम लोग संस्कृत और गुजराती भाषा का सह संबंध, इस विषय पर बातचीत करेंगे।
हाँ जी
तो सबसे पहले तो आप हमको ये बताएं कि भाषाओं का मानव जीवन में क्या महत्व है।
देखिए, प्रारंभ से ही भाषा है वो ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का विनिमय, विचारों का आदान प्रदान करता रहा है।
जी
या ऐसा कह सकते हैं कि मनुष्य को जब अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए किसी सार्थक मौलिक साधन की आवश्यकता प्रतीत हुई, उसी समय भाषा का आविष्कार हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, भाष ऐसी धातु है, उस धातु पर से भाषा शब्द की निष्पत्ति हुई है। हम
जी
इसके माध्यम से अपने विचारों का विनिमय एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, और इसका जो हम संबंध स्थापित करें तो मानव सभ्यता के साथ इसका संबंध स्थापित कर सकते हैं। मनुष्य विचार तत्व से तो सबल होता है, लेकिन यदि उसके पास उसको अभिव्यक्त करने के लिए भाषा ना हो तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती, और इसी कारण से प्रारंभ में भाषा का आविष्कार हुआ होगा। और भाषा के विषय में इस प्रकार की बातें हम अनेक ग्रंथों के माध्यम से पढ़ते आ रहे हैं।
जी 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 सर। और भाषा की उत्पत्ति
और
इसी के साथ
आप,
बताएं। जी
हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल,
जी आपने सर कहा भाषा की उत्पत्ति ऐसे ही हुई होगी, उसके विषय में कुछ बताएं कि आपके क्या विचार हैं, आपको क्या लगता है कैसे भाषा की उत्पत्ति हुई होगी।
हाँ जी। जैसा कि हम सर्वप्रथम भाषा वैज्ञानिक के रूप में आचार्य भर्तृहरि को स्वीकार करते हैं,
जी
उन्होंने, भर्तृहरि जी ने बहुत एक सुंदर लिखा है कि इति कर्तव्यता लोके सर्वा शब्द व्यपाश्रय। वहां पर जो भाषा शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन शब्द शब्द का प्रयोग है। वो
जी
कह रहे हैं कि मनुष्य की समस्त क्रियाएं हैं, वो सारी क्रियाएं हैं वो शब्द के यानी भाषा के आश्रित
जी
हैं। और ऐसा भी वो कहते हैं, न सोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दाद अनुगमाद्रिते अनुविद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भाषते। हमें लौकिक कर्तव्य का जो कोई बोध होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यह सब हमें भाषा के माध्यम से ही पता चलता है।
जी
इसलिए भाषा की अनिवार्यता हमारे शास्त्रों में प्रतिपादित की गई है।
जी
और इस संदर्भ में एक आचार्य डंडी के हम वचन को भी यहाँ पर स्मरण करना चाहेंगे।
जी जी
वो लिखते हैं, इदम अंधन तमः कृष्णम जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दा वयम ज्योतिरा संसार न दीप्यते। यदि इस संसार में शब्द ज्योति की उत्पत्ति नहीं होती तो यह संपूर्ण संसार है वो अंधकारमय होता। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जैसे मनुष्य जीवन का प्रारंभ हुआ,
जी
और हम तो भारतीय इस विषय में भी विश्वास रखते हैं कि मनुष्य संस्कृति के विकास के साथ ही वेदों का भी आविर्भाव हुआ, और वो
जी
भी वेदों का ज्ञान है, वो किसी माध्यम न किसी न किसी माध्यम से दिया गया है, और वो माध्यम है हमारी भाषा, और उसमें भी संस्कृत भाषा।
जी जी सर। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा गया है सर, तो
हाँ जी,
इसकी विशेषता कुछ बताएं संस्कृत की और अन्य भाषाओं के साथ इसका क्या संबंध है।
देखिए, हम जब अपने शास्त्र पढ़ते हैं या भाषा के विज्ञान के का भी अध्ययन करते हैं, भाषा विज्ञान का, तब हमें पता चलता है कि इस समय का जो भाषा विज्ञान है वो प्रायः 3100 वर्ष पुराना होगा।
अच्छा
इससे ज्यादा पुराना हमें भाषा का इतिहास नहीं मिलता,
जी
लेकिन
जी
हम वेदों का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि सृष्टि के आविर्भाव में ही भाषा की उत्पत्ति हुई होगी। देखिए, ऋग्वेद में एक सुंदर मंत्र भी आता है इस संदर्भ में,
जी
देविन वाचम अजनयंत देवाः ताम विश्वरूपा पशवो वदन्ति। इसलिए हम कह सकते हैं की भाषा है, उसी के माध्यम से मनुष्य अपने समस्त व्यवहारों का आदान प्रदान करता आया है।
जी
और देखिए पाणिनीय में शिक्षा में बहुत सुंदर किस तरह उत्पत्ति होती है वर्णों की, शब्दों की, उस संदर्भ में बहुत सुंदर लिखा है, आत्मा बुद्ध्या समेत्य अर्थान मनोयुंगते विवक्षया मनः कायाग्नि माहन्ति सब प्रेरयति मारुतम मारुतः तूरसी मारुतस्तु ऊरसी चरण मंदम जनयति स्वरम। हमारी जो आत्मा है बुद्धि से अर्थों को ग्रहण करते हुए मन को विवक्षा के माध्यम से जोड़ती है, और मन है वो हमारी जो जठराग्नि है उस पर प्रभाव डालती है, और वह वायु के माध्यम से नाभि स्थान से होते हुए हृदय और फिर कंठ तक जाते हुए वह शब्द की निष्पत्ति करती है। तो हमारे इन शब्दों की निष्पत्ति के साथ ही इतना गुड़ रहस्य पाणिनि ने प्रतिपादित किया है, उसके साथ भाषा का भी विकास और उद्भव हुआ होगा ऐसा हम भारतीय जो संस्कृति या भारतीय जो सिद्धांत पर विश्वास रखने वाले हैं उनका ऐसा मानना है। और संस्कृत भाषा है वो विश्व की सर्व प्राचीन भाषा है, यह तो वैदेशिक विद्वान भी एक मत से स्वीकार करते हैं। समाज में थोड़ा सा परिवर्तन हम या मतभेद देख सकते हैं
जी।
लेकिन संस्कृत भाषा को सर्व प्राचीन भाषा के रूप में तो प्रायः सभी स्वीकार किया है।
जी सर, आपकी बातों से समझ में आया सर कि शब्दों की कितनी महत्ता है, और हम लोग शब्दों का सारा दिन दुरुपयोग करते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन शब्द जो है वो बहुत मायने रखते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही सर। और एक बात सर मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि गुजरात में संस्कृत की क्या दशा है?
गुजरात में भी लगभग हमें जहां तक साहित्य प्राप्त होता है तो लगभग 13वीं शताब्दी से लेकर आज तक बहुत सारे ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, और उनकी संख्या मुझे लग रहा है 1000 के आसपास होनी चाहिए।
जी,
इसमें से कितने उपलब्ध हैं और कितने नहीं हैं यह थोड़ा विचारणीय विषय रहेगा, लेकिन गुजरात में अभी भी ऐसे पुस्तकालय, ऐसे ग्रंथालय हैं जहां पर संस्कृत के दुर्लभ ग्रंथ भी इस समय भी प्राप्त होते हैं। और विशेषकर आप जानते होंगे जैन धर्म का गुजरात में काफी प्रचार प्रसार और विकास रहा है।
जी,
तो हमारे जो हेमचंद्राचार्य हैं,
जी
उन्होंने भाषा के विषय में और संस्कृत के विषय में बहुत सारा काम किया।
जी,
उनके कुछ ग्रंथ प्राकृत भाषा में भी हैं, लेकिन उन्होंने संस्कृत को भी अपने साहित्य की भाषा बनाई है, और उसके साथ उन्होंने जो अर्वाचीन गुजराती भाषा है उसका भी थोड़ा प्रारंभ कर दिया, ऐसा हम कह सकते हैं।
लेकिन सर आज की स्थिति क्या है संस्कृत की? स्कूलों में और कॉलेजेस में संस्कृत पढ़ाई जाती है? मतलब वहीं कि आप लीजिए ना लीजिए, अब हम लोग के यहाँ पर तो ऐसे हो गया कि जो संस्कृत लेना चाहे ले, ना लेना चाहे, वैकल्पिक विषय हो गए हैं। लेकिन आपके यहाँ क्या है गुजरात में?
हमारे यहाँ कक्षा 6 से 9वीं तक अनिवार्य विषय के रूप में संस्कृत है।
जी,
10वीं में विकल्प के रूप में आती है संस्कृत, लेकिन अधिकांश विद्यार्थी वो संस्कृत को पसंद करते हैं क्योंकि एक परफेक्ट भाषा है
जी,
और आप इसमें मेहनत करके पूर्ण अंक भी प्राप्त कर पाते हैं।
जी बिल्कुल,
इसलिए 10वीं में भी संख्या अच्छी रहती है। 11वीं 12वीं में जो आयुर्वेद आदि विषय लेते हैं
जी,
वो भी साइंस वाले विद्यार्थी होते हुए भी संस्कृत को पसंद करते हैं, और कला संकाय में यानी कि आर्ट्स में तो संस्कृत है ही, तो 11वीं 12वीं में भी अच्छी है। दूसरी यहाँ पर जो जो ये स्कूलों में परंपरा है उसके अलावा यहाँ पर पाठशालीय परंपरा भी है।
जी
उसमें भी हजारों विद्यार्थी हैं वो संस्कृत का कहते हैं ना शब्दशः अध्ययन करते हैं,
जी,
तो स्थिति ही स्थिति धीरे धीरे कुछ जगहों पर अच्छी भी होती दिखाई दे रही है। विशेषकर यहाँ पर अभी संस्कृत बोर्ड का निर्माण हुआ है और संस्कृत यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर अस्तित्व में है।
जी,
इसके माध्यम से संस्कृत के प्रचार प्रसार का अच्छा कार्य है।
अब नई शिक्षा नीति जो बनी है उसमें संस्कृत को बढ़ावा तो दिया जा रहा है सर, और देना भी चाहिए, क्योंकि अब तो सिद्ध हो चुका है कि वैज्ञानिक भाषा है, कंप्यूटर पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है बड़ी आसानी से, तो संस्कृत का प्रयोग तो होना ही चाहिए। और सर, गुजराती भाषा के उद्भव के विषय में भाषाविद क्या मानते हैं? क्योंकि सर आपने शायद हमारे कार्यक्रमों को सुना हो, हम लोगों ने अभी एक श्रृंखला चलाई थी, उसमें हम लोग दक्षिण भारतीय भाषाओं पर हम लोगों ने मतलब मंथन किया था, और तमिल मलयालम कन्नड़ तेलुगु इन भाषाओं का हमने श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम पेश किया था। तो हम हमारा ये उद्देश्य है कि हम देशों की भाषाएं हैं, उन पर क्षेत्रीय भाषाएं, उनके विषय में अपने श्रोताओं को बताएं और आप जैसे विशेषज्ञ आकर हमको कुछ जानकारी दें। तो हम गुजराती की ले रहे हैं, तो अब हम गुजराती भाषा की चाहेंगे आप जानकारी लेना, तो आप हमको इस विषय पर कुछ बताएं कि गुजराती भाषा के उद्भव के विषय में भाषाविद क्या कहते हैं।
हाँ जी, मैंने आपके कुछ पिछले एपिसोड मैंने सुने
जी,
और उनमें बहुत ही सुंदर तरीके से जैसे मलयालम भाषा का विकास, तेलुगु भाषा का विकास और उसके साथ संस्कृत को जोड़कर बहुत सारी बातें रखी गई है। आपका यह प्रयत्न बहुत ही उत्तम है और मुझे लग रहा है आज के इस युग में जहां पर टिकटॉक या ऐसी चीजें
जी,
जो कह सकते हैं एक मनोरंजन का विकृत स्वरूप है, उसको पसंद किया जा रहा है आज के युवाओं के द्वारा, बालकों के द्वारा। इस समय में साहित्य की, संस्कृति की, भाषाओं की और विशेषकर ऐसे मुद्दे जो सामाजिक विषयों को स्पर्श करते हैं, ऐसे मुद्दों को लेकर आपका जो यह प्रयत्न है वो अत्यंत प्रशंसनीय है और मुझे भी बहुत आनंद आया। एक
सर मैं
अन्य
बताना
भाषाओं को
चाहूंगी,
सीखने की इच्छा रखने वाले एक जिज्ञासु के नाते मुझे बहुत लाभप्रद हुआ और
जी सर,
गुजराती के संदर्भ में आपने जो रखा है वो भी एक बहुत सुंदर है। मैं प्रयत्न करूंगा कि मैं गुजराती भाषा को भी आपके समक्ष किस तरह विकास हुआ और किस तरह उसका गुजराती भाषा का क्या महत्व है वो थोड़ा समझा सकूं। देखिए, गुजराती भाषा है बहुत ही मीठी भाषा है।
जी
आप
बिल्कुल,
गुजराती में किसी को बोलते सुनेंगे तो स्वाभाविक रूप से आप उसकी भाषा या उसके जो शब्दों को सुनकर हैं वो आप प्रसन्न हो जाए।
बिल्कुल सर,
तो
ठीक
बहुत
है।
मधुर भाषा है गुजराती। अब इसकी उत्पत्ति देखें, सबसे पहले गुजराती भाषा का व्यापक स्वरूप क्या है थोड़ा ये देख लेते हैं, फिर हम जाते हैं उद्भव की तरफ।
जी,
2011 में जो जनसंख्या की गिनती होती है उसमें वक्ताओं की संख्या के आधार पर गुजराती है वो छठे क्रम पर आती है।
छठे क्रम में सर,
हाँ जी,
सिक्स्थ।
छठे क्रम में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है भारत में वो गुजराती है
जी सर,
और हम इसको परसेंटेज के रूप में देखें तो भारत की जो जनगणना है उसका उसके लगभग 4.5% जितने लोग हैं वो गुजराती बोलने वाले हैं
जी
और ज्यादातर आपको गुजरात के बाहर विदेशों में भारतीय दिखेंगे उसमें गुजरातियों की संख्या बहुत अधिक संख्या में होगी।
जी
विश्व में देखें तो लगभग 6.55 करोड़ लोग गुजराती बोलते हैं।
जी जी बिल्कुल, विदेशों में तो बहुत गुजराती लोग भी हैं, गुजराती बोली जाती है। जी सर,
बिल्कुल, और 2007 में जो गणना हुई थी उसमें 26वें विश्व में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा गुजराती है। तो आप
जी,
सोच सकते हैं कि गुजराती भाषा है वो कितनी लोकप्रिय है और कितने लोगों के हृदय में और मस्तिष्क में वो स्थान रखती है।
बिल्कुल,
गुजरात के बाहर भी जैसे आप लंदन में देखें तो लंदन में चौथे क्रम में गुजराती सबसे ज्यादा बोली जाती है। इसके
वाह,
अलावा केन्या, अफ्रीका, युगांडा, तांजानिया, जाम्बिया और दक्षिण अफ्रीका आदि जो देश हैं
जी
उसमें भी बहुत अच्छी संख्या में गुजराती भाषा बोली जाती है।
जी
और हमारे जो महात्मा गांधी हैं,
जी सर
सरदार
बिल्कुल
वल्लभ भाई पटेल हैं,
जी सर
नरसिंह मेहता हैं, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं,
जी
मोरारजी देसाई हैं, तो ये सब महापुरुष हैं। वो गुजराती भाषा को ही अपनी मातृभाषा के रूप में लेकर उन्होंने भारत की अखंडितता और भारत के वैभव को बढ़ाने का कार्य किया।
बिल्कुल सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर
और व्यापार के क्षेत्र में तो आप गुजरातियों का डंका देखते ही हैं, धीरूभाई अंबानी हो या
बिल्कुल
JRD टाटा हो, वो भी आप देख सकते हैं। और राजनीति के क्षेत्र में आज विश्व फलक पर नरेंद्र मोदी जी भी हैं, वो भी गुजरात से ताल्लुक
बिल्कुल
रखते हैं। तो ऐसी गुजराती भाषा
अमित शाह
यहाँ
जी और
पर,
मोदी जी दोनों का
बिल्कुल जी बिल्कुल।
जी सर
ये और दूसरा ये है कि इन लोगों ने मातृभाषा को गुजराती चुना, मात्र मातृभाषा को इसलिए नहीं चुना कि स्कूल में पढ़ाई जाए, लेकिन इसके माध्यम से जो राष्ट्र भावना या अपने समाज के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने जो खान पान है, रहन सहन है, उसके प्रति भी यहाँ पर भाषा के साथ कुछ न कुछ ज्ञान यहाँ पर पिरसा जाता है,
जी
ज्ञान वो बांटा जाता है। इस कारण से उनके रग रग में कह सकते हैं कि राष्ट्र के लिए कुछ करने की भावना उत्पन्न हो।
जी सर
अब मैं आता हूं गुजराती भाषा के थोड़ा उद्भव के संदर्भ
जी सर बिल्कुल
में। भाषा विज्ञान यह कहता है कि जैसे कि इस समय भारत, ये पूरे विश्व में 3,000 भाषाएं हैं
जी
और उसकी संख्या भी लोगों ने 2796 तक निश्चित भी की है, और उसका जो हमने परिवार मूलक और आकृति मूलक वर्गीकरण भी किया है,
जी
उसमें आप देखते हैं तो पारिवारिक वर्गीकरण का जो मुख्य आधार है वो अर्थ तत्व और रचना तत्व का साम्य। आप
जी
देखेंगे सारी भाषाएं हैं परिवार मूलक जो वर्गीकरण के आधार पर, वो सब में अर्थ तत्व और रचना तत्व आपको उसकी समानता दिखाई देगी। और
जी
इस वर्गीकरण में हम लगभग 100 से ज्यादा परिवारों का समावेश करते हैं, और इसी में भारों के परिवार है वो विशालतम परिवार है, यह तो हम जानते हैं।
जी
और उसके भी दो विभाग हैं, सतम और केंतुम वर्ग, उसके बारे में भी काफी बातें पहले हो चुकी है। और उसमें जो सतम वर्ग है उसमें भारत ईरानी आर्य भाषा परिवार आता है।
जी
वो भी हम सारे जब भारतीय भाषाओं का अध्ययन करते हैं तो यह क्रमशः हम देखते हैं। तो ये जो भारत ईरानी आर्य भाषा परिवार है, इससे संस्कृत भाषा, इसको संस्कृत भा इससे संस्कृत
आपकी
भाषा की
आपकी
उत्पत्ति हुई,
आवाज
इसको संस्कृत
थोड़ी
भाषा की उत्पत्ति हुई।
जी सर
और इस
आपकी
आधार पर
आवाज
हम देख
थोड़ी सी
सकते हैं,
कम
हाँ जी अब आ रही है आवाज,
हाँ जी थोड़ा सा अब ठीक है हाँ जी अब बोले
उस भारोपीय जो परिवार है
जी सर
उसमें भारत ईरानी आर्य भाषा से ही संस्कृत भाषा की उत्पत्ति हुई,
जी जी
ऐसा भाषा वैज्ञानिक मानते हैं। और इसको समय की दृष्टि से देखें तो इसका तीन प्रकार का विभाजन होता है।
जी
पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, फिर दूसरा है मध्य भारतीय आर्य भाषा, और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा।
जी
तो प्राचीन भारतीय भाषा में वैदिक संस्कृत और फिर लौकिक संस्कृत का समावेश होता
जी जी
है। मध्य भारतीय भाषाओं में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, और पैशाची भाषाओं का समावेश किया जाता है।
यानी महाराष्ट्री भाषा जो है वो इन आधुनिक भाषाओं से प्राचीन है सर, वो
हाँ,
मध्य
माने ये जो महाराष्ट्र है वो आज के भौगोलिक परिसर के आधार से मत देखिए आप,
जी।
वो उसकी व्यापकता की दृष्टि से देखिए तो महाराष्ट्र की भाषा, वो भाषा विज्ञान के लोग, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो मध्य भारतीय भाषाओं में आ जाती है।
अच्छा, ये तो हमें नई बात पता चली जी सर।
और आधुनिक भाषाओं में आप देखते हैं कि बंगाली है, गुजराती, असमी, उड़िया, पंजाबी, मराठी। अब देखिए मराठी भाषा यहाँ, वो महाराष्ट्री भाषा वो प्राचीन वाली है,
जी,
आधुनिक भाषा है वो मराठी वाली, तो वो आधुनिक भाषाओं में आती है।
दोनों में फर्क होगा सर।
हाँ जी बिल्कुल, अंतर होता है। जैसे वैदिक संस्कृत में और लौकिक संस्कृत में जो अंतर है
अच्छा,
वैसा ही होगा, और मुझे नहीं लगता ये महाराष्ट्रीय भाषा होगी, ये मराठी भाषा से बहुत कुछ साम्य रखती होगी, कुछ इसका व्यापक स्वरूप रहा होगा।
ये तो आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी सर आज
ये भी
जी।
थोड़ा गवेषणा का विषय रहेगा कि
जी,
महाराष्ट्रीय भाषा और जो मराठी भाषा, उन बीच में, उन दोनों के बीच में क्या अंतर है।
बिल्कुल।
अब देखिए जो मध्यकालीन जो प्राकृत भाषा है उसके अपभ्रंश भाषा, और उस अपभ्रंश भाषा में से गुजराती भाषा का विकास हुआ है, उद्भव हुआ है।
जी
लगभग 11वीं शताब्दी के आसपास इसका गुजराती भाषा का हम उद्भव मान सकते हैं, लेकिन भाषा है वो अचानक नहीं पनपती, कई सदियों का उसको सफर करना पड़ता है, उसके बाद उसका एक स्वरूप निर्धारित होता है।
जी
तो 8वीं शताब्दी में भी कहीं ना कहीं ऐसे उल्लेख प्राप्त होते हैं, कुछ ऐसी भाषा ये राजस्थान और गुजरात में बोली जाती है।
जी
अब देखिए उल्लेख कहाँ मिलते हैं, जैसे बौद्ध युग है उसमें तो हम देखते हैं कि रामायण महाभारत के लौकिक संस्कृत भाषा के बाद बौद्ध और जैन युग में पाली और प्राकृत भाषा,
जी बिल्कुल।
और उसके बाद अपभ्रंश भाषा। और त्रिपिटक देखिए, अशोक शिलालेख देखिए, गुजरात के जो शिलालेख है उसमें अशोक के शिलालेख, गिरनार के शिलालेख है वो बहुत महत्वपूर्ण,
जी
वहां पर भी पाली भाषा, संस्कृत नाटकों में, हेमचंद्र के व्याकरण में अनेक प्रकार की प्राकृत और मागधी भाषाओं का उल्लेख प्राप्त।
जी
अब अपभ्रंश भाषा है उसकी बात करें तो एक वज्रसेन द्वारा भरतेश्वर बाहुबली भोर ऐसा ग्रंथ है, वो 1169 ईस्वी का है, और शालीभद्र कृत भरतेश्वर बाहुबली रास वो 1185 का है।
जी
उसी तरह जम्बू सामी करीय और विजयसेन सूरी का रेवतन गिरी रासु, ऐसे कुछ ग्रंथ प्राप्त होते हैं जहां पर अपभ्रंश, और अपभ्रंश में भी गुजराती भाषा के शब्दों और उसकी उत्पत्ति का एक पूरा एक क्रम उनके ग्रंथों में हमें प्राप्त होता है।
जी
दूसरा आप देख सकते हैं कि हेमचंदाचार्य जी ने सिद्ध हेम शब्दानुशासन लिखा, वहां पर उन्होंने कहा है कि अपभ्रंश व्याकरण जो विभाग है वहां पर कहा कि अपभ्रंश भाषा का प्रयोग गुजरात के समीपवर्ती क्षेत्र में किया जाता था।
जी
भोजराज है वो भी सरस्वती कंठाभरण में इस अपभ्रंश भाषा का प्रयोग सूचित करते हैं, और बहुत देखिए कितनी सरल संस्कृत है आप भी समझ जाएंगे,
जी।
अपभ्रंशेन तुष्यन्ति स्वेन नान्येन गुर्जराः, जो गुर्जर होते हैं वो अपभ्रंश से ही भी संतुष्ट हो जाते हैं।
जी
तो अपभ्रंश के माध्यम से गुजराती भाषा का एक स्वरूप निश्चित किया गया। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि संस्कृत शब्द है कर्म,
जी सर,
उसका अपभ्रंश हुआ है कम्म,
जी
और उससे गुजराती शब्द बन गया काम।
जी
तो यहाँ आप देख रहे हैं जो र है उसको आकार के रूप में परिवर्तित किया गया है, और ये कम्म से काम, क्योंकि बोलने में जोर लगता है और ये जो काम शब्द बोलने में इतनी इतना बल नहीं लगता है, तो इस तरह ऐसा शब्द बन।
जी
पंच है उसका गुजराती में पांच बन गया।
जी
कुंभकार, ये संस्कृत का शब्द है, इसको कुंभकार
कुम्हार
ये अपभ्रंश में बना, और इसको जो गुजराती में कुंभार
जी
ऐसा बना। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि
जी जी
जो संस्कृत भाषा है उसके साथ सीधा गुजराती भाषा का साम्य आपको दिखाई देगा। कुछ परिवर्तन सामान्य होते हैं, लेकिन वो शब्द वो परिवर्तन आपको संस्कृत के एकदम नजदीक ले जाते हैं।
जी जी सर, संस्कृत का तो हर भाषा से ही संबंध दिख जाता है सर। जो भी भाषा के शब्दों का हम जिक्र करते हैं तो संस्कृत शब्दों से ही निकले होते हैं वो शब्द। जी
हाँ जी
सर,
बिल्कुल, गुजराती के भी लगभग, मैं जैसे मैंने पढ़ा है, लगभग 60% जो शब्द है वो संस्कृत के साथ साथ
अच्छा जी,
यहाँ पर आप देखेंगे गुजराती भाषा में कुछ उर्दू के, कुछ फारसी के, कुछ अन्य भाषाओं के भी शब्द आपको दिखाई देंगे।
जी जी
इसका कारण यह है कि आप देखेंगे कि गुजरात के माध्यम से व्यापार का केंद्र रहा है,
जी
और यहाँ पर शक हूण हो, मुगल हो, या फिर पारसी हो, फिर अंग्रेज हो, यहाँ बहुत समय तक रहे,
जी
तो उनके साथ रहते रहते कुछ शब्दों को गुजराती भाषा में वो स्वीकार कर लिया,
जी
और इस तरह गुजराती भाषा है वो बहुत सारी संस्कृतों के शब्दों को अपने अंदर समाहित करती है।
जी
और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा
जी सर,
कि ये जो गुजराती भाषा है वो मात्र अभी गुजरात में बोली जाती है, लेकिन मध्य काल में ये राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात और महाराष्ट्र तक बोली जाती थी।
अच्छा जी,
और ये आनर से ऐसा ऐसा नाम गुजरात का प्राप्त होता है प्राचीन ग्रंथों में,
जी
और उसके बाद फिर गुर्जर जो जाति है उसके आधार पर गुजरात ऐसा नामकरण हुआ, और उसी के आधार पर गुजराती भाषा ऐसा हमें नामकरण है वो प्राप्त हुआ है।
जी
सरस्वती कंठा भरण है ना,
जी
उसमें राजा भोज ने गुजरत्ता ऐसा भी प्रयोग किया है, गुजरत्ता ऐसा प्रयोग किया। तो आप देखते हैं कि गुजराती भाषा है वो लगभग 12वीं शताब्दी में अलग अलग नामों से प्रचलित थी, लेकिन गुजराती शब्द को 12वीं शताब्दी के अंत भाग में उसको ऐसा नामकरण मिला गुजरात, और फिर वो गुजराती का पूरा विकास हम देख सकते हैं।
जी जी, बहुत अच्छे से आपने सर हमें गुजराती भाषा के उद्भव के विषय में बताया। और सर मैं ये जानना चाहूंगी कि किस समय गुजराती भाषा प्रचलन में आई और गुजराती भाषा का विकास किस तरह से हुआ।
देखिए जैसे मैंने कहा था कि 8वीं शताब्दी में अपभ्रंश काव्यों में या जैनों के द्वारा लिखे गए काव्यों में गुजराती है उसे आपको मिलती।
जी जी,
भाषा ऐसी चीज नहीं है कि वो अचानक आके बन जाए, उसको काफी समय लगता है अपने स्वरूप को निर्धारित करने।
बिल्कुल सर,
तो गुजराती भाषा है वो लगभग 12वीं और 13वीं शताब्दी के आसपास अस्तित्व में आई, और उसके अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से आप देखेंगे बहुत सारे जो गुजराती के ग्रंथ है वो प्राचीन ग्रंथ है, वो प्राचीन गुजराती भाषा में है।
जी।
उसको आजकल का जो गुजरात पढ़ने वाला है वो उसको समझने के प्रयत्न करना।
अच्छा, इतना फर्क है दोनों प्राचीन
हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर एक अफो करके हुए हैं कवि,
जी
उनके जो जैसे आपके दोहे हैं दास के,
जी जी
तो अखो के भी यहाँ पर ऐसे पद्य हैं
जी
जिनको समझना सामान्य आजकल का जो शहर शहरी संस्कृति से जुड़ा हुआ गुजराती वो समझ नहीं पाएगा। ऐसे ही प्रेमानंद जी हुए हैं,
जी
उन्होंने दशम स्कंध ऐसा लिखा है और उसमें भी जो प्रयोग है वो भी एक अलग प्रकार का प्रयोग है।
जी
तो इस तरह गुजराती भाषा है धीरे धीरे विकसित होती गई और आजकल मॉडर्न गुजराती चल रही है। इसको भाषा की दृष्टि से देखें तो हम पतन करेंगे, लेकिन आधुनिक जो ट्रेंड और आधुनिक समाज के साथ हाथ से हाथ रखकर चलने वाली भाषा है वो आधुनिकता के साथ अब जुड़ गई।
जी,
तो आजकल काव्य ऐसे आधुनिक शब्द आधुनिक भाषा में लिखे जाते हैं।
जी जी बोल चाल की भाषा कह लीजिए।
हाँ जी बिल्कुल।
जी सर, और सर गुजराती शब्दों की रचना और व्याकरण के विषय में कुछ बताएं आप।
हाँ जी बिल्कुल। देखिए जैसे हमने देखा कि संस्कृत भाषा से ही गुजराती भाषा की उत्पत्ति हुई है
जी,
और भौगोलिक और ऐतिहासिक और साहित्यिक और अन्य कुछ कारण हो सकते हैं कि दोनों में काफी कुछ थोड़ा मोड़ा अंतर आपको दिखाई देगा।
जी,
हम देखते हैं कि भाषा का जो निर्माण हुआ उसमें चार प्रकार के प्रभाव है। एक ध्वनि का प्रभाव,
जी,
दूसरा है रूप का प्रभाव,
जी,
तीसरा है अर्थ का प्रभाव और चौथा है वो शब्द या वाक्य का प्रभाव। इन चार प्रभावों के आधार पर हम संस्कृत में से गुजराती को रूपांतरित होते हुए।
चौथे प्रभाव से फिर बताएं, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। तीन
हाँ
तो
जी,
हमने सुन लिया, चौथा प्रभाव आप जो बता रहे
चौथा
थे।
प्रभाव है वो शब्द प्रभाव,
शब्द प्रभाव, अच्छा,
या वाक्य प्रभाव इसको कह सकते हैं।
जी,
अब देखिए आप देख सकते हैं जैसे गीतम है,
जी
इसको अपभ्रंश में घीऊ ऐसा हुआ
जी
और गुजराती में घी दीर्घ। अब श्रीगाल तो ये सियालु प्राकृत अपभ्रंश में हुआ और गुजराती में देखेंगे तो सियाल।
जी,
रीच शब्द है वो रिक्ष शब्द से बने।
जी जी
तो यहाँ पर देखेंगे रिक्ष और अपभ्रंश में रिच्छु हुआ और फिर रीच ऐसा गुजराती में। ऐसे बहुत सारे हैं, मृतिका से माटी शब्द।
जी जी
हम मिट्टी बोलते हैं यहाँ पर, माटी ऐसा शब्द का।
जी माटी, जी
हाँ। तो इस तरह ध्वनि के माध्यम से भी हम कुछ परिवर्तन देखते हैं।
जी,
औषध शब्द है देखिए आप,
जी
उसको गुजराती में औषध ऐसा बोला जाता है।
जी,
कुछ बनी प्रयत्न लाघव के कारण भी शब्द निर्माण हुए, जैसे ज्योतिषी का उसका जोशी हो गया। गुजरात में जोशी ऐसी माने क्या कहते हैं सरनेम वाले बहुत लोग आपको मिलते हैं।
जी जी
तो इस तरह देखते हैं कि बहुत सारे जन जन शब्द को जन हो गया।
जी,
एक आप और देखेंगे कि न को ण यहाँ पे बहुत जगह बोला जाता है।
जी,
जन को जन,
जन, जी बिल्कुल।
और एक और शब्द आप देख सकते हैं ड, ये ड वर्ण है ना, वर्ण ड।
जी बिल्कुल जी,
ये आपको हिंदी में नहीं मिलेगा।
जी,
लेकिन हम जब ऋग्वेद का अध्ययन करते तो अग्नि मीठे वहां पर जो ड नहीं है पर ड ऐसा शब्द है उससे मिलता जुलता गुजराती में ड हो।
जी,
जैसे कमल होता है तो हम उसको गुजराती में कमल बोलेंगे। नल होता होता है तो नल को नड़ बोले।
अच्छा जी,
तो ये थोड़े परिवर्तन है जो वर्ण के आधार पर आपको गुजराती में मिल जाएंगे।
जी सर,
रूपों
बहुत
में भी परिवर्तन देखिए। एक दो उदाहरण दे देता हूँ इसके साथ ही
जी, बिल्कुल दें
कि कथयति यानी कहता है
जी।
तो यहाँ पर कहई ऐसा अपभ्रंश हुआ।
जी
अब देखिए कहई बोलने में आपको कठिनाई होगी। अब गुजराती ने इतना सरल कर दिया कहे
कही जी। अच्छा
कथयति कहे।
जी
देखिए तरती तो इसको तरे।
अरे जी
हाँ तरई है वहां पर अपभ्रंश तो बोलने में कठिन हो जाता है। अब देखिए पनस पनसम बोलते हैं अपने क्या कहते हैं कटहल को।
अच्छा जी,
संस्कृत में पनसम बोला जाता है।
अच्छा जी,
अब आप गुजराती में देखिए पनसम बोलने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है
जी
लेकिन अब गुजराती में इतना सरल कर दिया उसका सरलीकरण फणस हो गए।
अच्छा जी,
फणस एकदम आसानी के साथ कोई व्यक्ति बोल सकता है। अब लोहकार है तो उसका लुहार कर दिया।
जी लोहार, बिल्कुल
हाँ जी। और यूका शब्द है तो लंबा है तो जू ऐसा शब्द तो हिंदी में भी हम देखते हैं।
जी
अमृतम शब्द है देखिए अमी कर तो गुजराती भाषा है उसको जब बोलने में जिन वर्णों को कठिनाई होती उसको सरल के माध्यम से प्रस्तुत करने का कार्य है वो गुजराती साहित्य में और गुजराती भाषा के व्याकरण में।
जी
तो इस प्रकार बहुत सारे परिवर्तन आप देखेंगे वो संस्कृत भाषा से अपभ्रंश और अपभ्रंश से गुजराती लेकिन गुजराती है वो एकदम सरल होती गई है।
जी
और व्याकरण के अधिकांश नियम है वो आप गुजरात संस्कृत जानते हैं हिंदी जानते हैं तो आपको गुजराती का व्याकरण बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा।
समझ आ जाएगा जी सर, बिल्कुल।
तो थोड़ा समन्वयवादी जो एक अप्रोच लेते हुए गुजराती भाषा में ऐसे शब्दों को स्वीकार किया
जी,
लेकिन शब्दों की एक बहुत अच्छी व्यवस्था भी हम देखते हैं कि ऐसे ही कोई शब्द ऐसे ही बोलते वहां पर उसकी है ना हमें सार्थकता देखनी पड़ेगी।
जी
जैसे दो शब्द हैं गुजराती में आप देखिए पासे यानी पास
जी
और नजरे नजरे यानी उसका भी अर्थ होता है नजीक 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 बोलते हैं नजीक
नजदीक। अच्छा
हाँ उसको नजीक बोलते हैं गुजराती।
जी जी
अब देखिए पास और नजदीक हिंदी का भी शब्द ले लीजिए गुजराती में पासे और नजीक।
जी जी
ये दो शब्द का अर्थ आपको डिक्शनरी में एक ही मिलेगा।
अवध प्रांत में भी सर नजदीक को कई जगह पर नजीक भी कहा जाता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। गांव वगैरह की भाषा में मैंने सुना है कई लोगों के मुंह से नजीक ही कहते हैं।
लेकिन देखिए इसमें एक शब्दों की अपनी एक विलक्षणता होती है। देखिए आप वहां पर देखेंगे शब्दकोश में तो अर्थ एक मिलेगा लेकिन देखिए स्पर्श जहां पर स्पर्श होने की संभावना रहे वहां पर पास के शब्द का प्रयोग
जी
और नजीक देखिए यहाँ पर नजर शब्द है आपकी आंखों को का सामीप्य जिसको है
वो नजीक
वहां पर स्पर्श का सामीप्य है और यहाँ पर आंखों का सामीप्य है तो जो पासे है वो निकटता को अत्यंत निकटता को दर्शाता है और नजीक शब्द है वो उससे थोड़ा सा दूर अपने नजर के सामने हो
जी,
उसको दिखाता है।
वाह,
तो गुजरात भाषा को मात्र आप शब्द और अर्थ की दृष्टि से न देखें उसके भाव को और उसके शब्द के जो अंतर होता है अर्थ के अंतर समझने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।
जी
एक दूसरी बात
जी
गुजराती में एक बहुत अच्छा प्रयोग है आपने।
जी
ऐसा प्रयोग है ना, आपको ना हिंदी में मिलेगा ना अन्य कोई भाषा में मिलेगा। आपने का अर्थ होता है हम और तुम,
जी
आपको हम और तुम अलग शब्द मिलेंगे। अब देखिए, हम शब्द है ना, उसके लिए
जी
हमें ऐसा शब्द है,
जी जी
लेकिन सामने वाले के साथ हमारा इतना सामंजस्य या इतना क्या कहते हैं निकटता या इतना सामीप्य हो जाता है, तो उसके लिए हम आपने शब्द कहेंगे। यानी हम तो अलग नहीं है, एक ही है। तो ये भी हमें काम करना है, तो इसमें ये भाव है वो आपने शब्द है वो लाता है।
जी,
और जो जो हम ला हम काम करेंगे उसमें वो भाव नहीं आएगा जो आपने शब्द में आएगा, शब्द में आएगा।
जी,
तो ये गुजराती की कुछ विशेषता ऐसी भाषा की है जो आपको कुछ अलग आपको और भाषाओं से प्राप्त।
मतलब आपके कहने का मुझे ये अर्थ समझ आया कि अर्थ वही रहेगा शब्द का, लेकिन भाव के साथ वो शब्द बदल जाएगा।
बिल्कुल, और उसके लिए नहीं, अलग शब्द भी हैं।
जी जी,
वो आपने शब्द है वो हम तुम के संदर्भ में है, जो जो भाषा अन्य भाषाओं में नहीं होता है।
जी,
लेकिन हम शब्द है तो अमारू माने हम सबका,
जी
हमारा है ना, हमारा।
जी जी,
तो अमारू शब्द है वो, लेकिन आपको है वो शब्द आपको ना मिले।
जी,
ये ऐसी कुछ गुजराती भाषा की एक विशेषता ऐसी भी है कि कुछ ऐसे शब्द है जो एक दूसरे के निकटता को जोड़ते हैं।
जी, बहुत अच्छे तरीके से सर आपने समझाया। और वैसे सर देखा जाए तो हमारे भारत देश की ये विशेषता है कि हर भाषा में देखिए एक दूसरे शब्दों का, बल्कि विदेशी शब्दों को भी हम ऐसे स्वीकार कर लेते हैं कि वो लगते ही नहीं कि किसी और भाषा के हैं। ये तो हमारी हर भाषा की विशेषता है।
बिल्कुल बिल्कुल, और गुजराती भाषा में तो ये आपको अधिकांश देखने को मिलता है, क्योंकि फारसी के शब्द भी
जी जी
आजकल हम यदि 5 वाक्य बोले तो कुछ उर्दू के, कुछ फारसी के, कुछ अलग भी वहां पर यहाँ पर जो शब्द निर्माण हुआ है, तो और संस्कृति के भी शब्द हैं और भाषा के शब्द हैं, उसको भी यहाँ पर सहजता से स्वीकार कर।
जी जी और सर हम लोग जैसा कि आज का हमारा विषय है कि हम संस्कृत और गुजराती के सह संबंध पर बात कर रहे हैं, तो आप संस्कृत भाषा के साथ गुजराती भाषा को किस तरह देखते हैं? कुछ उदाहरण के साथ अगर हो सके तो हमें समझाइए।
हाँ, देखिए मैंने कुछ उदाहरण दिए थे, वो संस्कृत भाषा के शब्द ही दिए थे, कुछ और भी देख सकते हैं हम कि देखिए जैसे संस्कृत भाषा में ध्वनि परिवर्तन का नियम है धर्म, तो उसका देखिए धम्म हो गया
जी,
ध्वनि के प्रभाव से। सूर्य को सूरज हो गया
जी,
सूत्र को सूतर हो गया। देखिए गुजरात में सूत्र होता है ना
जी,
उसको सूतर बोलते हैं
जी।
फिर व्रत है तो व्रत हो गया।
अच्छा,
फिर लग्न है तो लगन हो गया
जी।
मुफ्त मुफ्त शब्द है ना, उसको मफत बोलते हैं यहाँ पे।
अच्छा जी,
तो इस तरह आप देखेंगे अन्य भाषाओं के साथ इसके हैं। संस्कृत का शब्द देखिए आप, जैसे देखिए सौवर्णिका, तो उसको हम सोनी बोल देते हैं
जी।
फिर देखिए मैंने श्वश्रु, तो यहाँ पर सासु, देखिए कितना सामीप्य है
जी,
श्वश्रु और सासु। फिर वधु है तो यहाँ पर बहु, बहु कहा जाता है
जी।
तो ध को ह हो गया है और वैसा ही शब्द। वापी, वापी कहते हैं तालाब, तालाब तालाब होता है
जी जी।
उसको वाव ऐसा शब्द। तो गुजराती भाषा है वो भले अपभ्रंश से निकली हो, लेकिन संस्कृत के साथ उसका बिल्कुल तारतम्य और साम्य आपको दिखाई देगा। यास्क ने पदों के चार प्रकार के विभाजन किए हैं आपको उस संदर्भ में होगा कि नाम आख्या उपसर्ग और निपात।
जी
तो गुजराती में भी इसी के आधार पर हमको नाम शब्द मिलेंगे, आख्या उपसर्ग शब्द और निपात शब्द भी मिल जाएंगे। वाक्य निर्माण देखिए आप, कुछ मैं उदाहरण देता हूँ। अहम कार्यम करोमि, अब देखिए इसी को हम गुजराती में बोलेंगे सरलता से, उसका हम संबंध देखेंगे। अहम को हूं कहेंगे
जी,
और कार्यम को हम काम
जी,
शब्द, और करोमि तो करू छू। देखिए हूं काम करू छू, अहम कार्यम करोमि, आपको संस्कृत आती है तो गुजराती सरलता से आ जाएगी। गुजराती है तो संस्कृत सीखने में क्या बता
जी जी।
अहम कार्य करवम, तो यहाँ पर हूँ काम वही का वही रहा जैसे संस्कृत में होता है, बस अकर्वम की जगह पर हो गया करतो हतो। देखिए उसी तरह मैं कार्य करूंगा, भविष्य काल की रचना देख लीजिए, तो हूँ कार्य हूँ काम, अब करिष्यामि तो करिष, देखो करिष्यामि है उसको मात्र करिष ऐसा करके वाक्य बन जाए
जी।
तो तीनों के जो काल के मैंने जो उदाहरण दिए हैं यहाँ पर आपको संस्कृत के साथ उसका गुजराती भाषा है उसका प्रयोग मिलता हुआ दिखाई देता है।
जी जी,
कर्तरी और कर्मणि प्रयोग के संदर्भ में बात करें तो वो भी यहाँ पर मिलेंगे
जी।
जैसे अशोक का उक्तवान, तो अशोक बोलियो, ठीक है वो वहां पर बोलतो हतो, जैसे हम जो भूतकाल के अध्ययन करते हैं, पर यहाँ पर देख अशोक का उक्तवान। अब इसी को प्रेरक रचना, प्रेरक रचना का हम देखें, जैसे देखिए अहम पाठम पठामि, मैं पाठ पढ़ता हूँ, ये तो हो गया सामान्य वाक्य। अब इसको प्रेरक में बदलेंगे तो अहम पाठम पाठयामि या अहम पाठम वाचयामि, अब इसका देखिए गुजराती करेंगे तो हूँ पाठ बोला उदाहू, अब देखिए हूँ पाठ बोलू छू, अहम पाठम पठामि और मैं अहम पाठम पाठयामि, तो हूँ पाठ बोला वो छू, तो आप देखेंगे संस्कृत के की तरह ही इसमें परिवर्तन आपको दिखेंगे। प्रयोग जैसे वहां पर होता है संस्कृत में पढ़कर लिखकर पठित लिखित, तो यहाँ पर भी देखिए वाची ने लखी ने हसी ने, इस तरह आपको कृदंत के रूप भी गुजराती भाषा में संस्कृत भाषा की तरह ही मिलेंगे
जी।
तो इस तरह देखते हैं सभी चीजों में गुजराती और संस्कृत भाषा है वो एक दूसरे कहीं कहीं पूरक दिखाई देता है।
पूरक भी, और आपने बहुत ही स्पष्ट तरीके से हमें समझाया कि गुजराती और संस्कृत भाषा के बीच में काफी मतलब निकट का संबंध है। आपने जैसा कहा कि अगर गुजराती आती तो संस्कृत आ जाएगी आसानी से, और संस्कृत आती तो गुजराती। और सर मुझे लगता है कि हमारे देश की लगभग हर भाषा के साथ ऐसा ही है, क्योंकि संस्कृत जननी है हर भाषा की। तो जैसे आपने कितने सारे शब्द बताए जो हम लोग भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में या पंजाब में हम देखते हैं वही शब्द, जैसे आपने लग्न कहा लगन, यहाँ पे भी लगन ही कहते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही मिलती जुलती हैं, बात करो तो लगने लगता है कि हाँ सच में कितना मिलता है सब कुछ, हमारी संस्कृति हमारी भाषा बोली सब मिलती है। बहुत अच्छी जानकारी सर आपने दी। और कुछ कहना चाहेंगे अपने इस विषय पर सर?
देखिए भाषाओं के संदर्भ में जिज्ञासा या सीखने की इच्छा हो
जी
तो आदमी बहुत कुछ कर सकता है। मुझे रविंद्रनाथ टैगोर जी का दृष्टांत याद आता है कि वो जब अंतिम समय में थे
जी,
उनका अंतिम समय तब वो 22वीं भाषा कोई सीख रहे थे, 21 भाषाओं को वो जान, और 22वीं भाषा हम राष्ट्र कवि या उनको इस उपाधि से सम्मानित करते हैं ऐसे नहीं करते हैं, उन्होंने अपने जीवन में भाषा साहित्य के लिए बहुत कुछ दिया हो
जी।
अब देखिए वो मृत्यु सैया पर है उस समय भी वो 22वीं भाषा को सीख रहे थे,
देखिए सर कितना
और 21
जज्बा।
भाषाओं के ज्ञाता थे। तो भाषाओं का इतिहास या भाषाओं के विषय में हमें यदि रस है तो कोई उम्र नहीं है सीखने की, कोई जगह जाने की जरूरत नहीं है। आज का इतना जो विश्व है वो इतना सीमित हो चुका है, इतना संक्षिप्त हो चुका है कि आप कहीं पर भी रहते हुए किसी भी भाषा के विषय में किसी भी भाषा को भी आप आसानी से सीख जाते हैं।
जी बिल्कुल सर। और
और
मैं तो
दूसरा
अपने
गुजराती भाषा की संरचना के विषय में एक और एक तो मैं बात रखना चाहूंगा।
जी, बताएं।
मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई भी व्यक्ति है जिसको गुजराती ना आती है वो हमारे साथ 15 दिन गुजरात में रह जाएगा तो उसको लगभग 70% गुजराती पढ़नी लिखनी तो 100%, लेकिन बोलनी भी 60 से 70% उसको 15-20 दिन में आएगी।
अरे
इतनी
वाह
सरल और इतनी अच्छी भाषा गुजराती।
जी वाह, बहुत अच्छी बात आपने कही सर। मैं तो अपने को सौभाग्यशाली समझती हूँ सर, आप लोग आते हैं और इतनी अच्छी जानकारी मुझे भाषाओं की मिलती है। थोड़ा बहुत भी जो समझ में आता है तो उससे अपने अंदर मैं महसूस करती हूँ कि मतलब आप लोगों से मुझे जानने का इतना अवसर मिल रहा है। और जाननी चाहिए सर अपनी कम से कम देश की जितनी भाषाएं हमको उनकी कुछ का, जैसे आपने रविन्द्रनाथ टैगोर जी का उदाहरण दिया कि वो मृत्यु शैया पर भी 22वीं भाषा सीख रहे थे, और हम लोग सब कुछ होते हुए भी दो चार में भी वो रह संतुष्ट हो जाते हैं कि चलो बहुत आ गया, बहुत
बिल्कुल, और
निकला।
घमंड करने लगते हैं कि मुझे तो ये तो
जी
कर
सर बिल्कुल।
तो ये तो उसके ऊपर है आपकी जिज्ञासा वृत्ति कितनी है और आप
जी
क्या जानना चाहते हैं। आप देखिए एक जगह पर रहते हुए पूरे भारतीय भाषाओं के संदर्भ में आप अलग अलग लोगों से बात करके एक बहुत अच्छा संकलन कर रहे हैं। शायद कोई गुजराती भाषा के विषय में या संस्कृत भाषा के साथ जोड़कर कोई शोध संशोधन कार्य करना चाहे या कुछ जानना चाहे तो उसको सरलता से इन बातचीत के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, आपके
जी
ये शुभन कार्यक्रम के माध्यम से उसको सरलता से सब पता
जी सर
और ये बहुत बड़ी सेवा है। और ये कार्य है वो शिलालिखित अक्षरम कहते हैं ना, पत्थर पर लिखा लिखे हुए अक्षर के समान आपका यह कार्य है।
आप लोगों का आभार है सर, आप लोग भी हमारे साथ इतना सहयोग करते हैं, कार्यों को आगे बढ़ा पा रहे हैं। बहुत इतनी हमें अच्छी जानकारी मिली और आपका आभार ही हम कह सकते हैं, और क्या कहें।
मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करकर, और आपने भी जिस तरह से संवाद के माध्यम से मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई व्याख्यान नहीं दे रहा लेकिन
जी
आपसे
सर जी
बातचीत कर रहा हूँ और सहजता के साथ सरलता के साथ आपके साथ मैं अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाया।
सर,
बहुत
हमारा
आनंद।
प्रयास यही होता है कि हम एक सहज बातचीत के द्वारा, क्योंकि वही समझ आती है। जो चीज मैं ही नहीं समझ पाऊंगी तो वो मैं कैसे अपेक्षा करूं कि मेरे श्रोता समझेंगे। और
बिल्कुल
सर
बिल्कुल
के बारे में जाना कि आपने 500 से ज्यादा अभिनव सुभाषित भी बना बना लिए अभी तक, और संस्कृत कवि के रूप में भी आपका काव्य लेखन बेजोड़ है। तो हम चाहेंगे सर कि आपके कवि रूप से भी अपने श्रोताओं का हम परिचय करवाएं, तो हम जल्द ही आपके साथ एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा एपिसोड बनाना चाहेंगे जिसमें आपका कवि रूप हमारे श्रोताओं के सामने आए। जब भी आपको टाइम होगा और हम भी चुभन में चाहेंगे कि आपको बुलाएं, तो सर हम आपका समय थोड़ा सा चाहेंगे, आपके कवि रूप का थोड़ा
बिल्कुल, मैं
सा
सहर्ष इसको
खदा।
स्वीकार भी करता हूँ। संस्कृत में जो सुभाषित है उसकी बहुत महत्ता है।
जी सर
बचपन से कुछ सुभाषित है वो पूरे जीवन भर के लिए हमें कुछ संदेश देते रहते हैं।
बिल्कुल सर
और मैंने देखे कि कुछ आधुनिक संदर्भों के आधार पर संस्कृत को प्रतिष्ठापित किया जाए तो संस्कृत की व्यावहारिकता और आधुनिक युग में संस्कृत क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उपादेयता क्या है, इस संदर्भ में कुछ कार्य करना चाहिए। तो आप जैसे लोगों की प्रेरणा और संस्कृत पढ़े होने का के कारण से कुछ अच्छे विचार आते रहते हैं नित प्रतिदिन, तो उनको हम काव्य के रूप में परिणत करने का प्रयत्न करते हैं। आप लोगों को पसंद आ रहा है ये
सर, बहुत अच्छा
हमारा इससे
लगा।
ही प्रयत्न सार्थक है।
सुबह सुबह
अवश्य
आपके
मैं
वो जो
समय
मिलते
मिलने
हैं
पर आपसे चर्चा करूंगा।
जी सर, वो जो सुबह सुबह आपके सुभाषित हमें पढ़ने को मिलते हैं, तो आपने जैसा कहा कि वास्तव में चाहे कुछ ही देर के लिए उन बातों का असर हो, लेकिन एक दिमाग में जाती तो है वो बातें, तो बहुत अच्छा। आप भी बहुत अच्छा सार्थक प्रयास कर रहे हैं सर ये सुभाषित लिखकर, और हम जैसे लोगों को भी इनको पढ़ने का मौका मिलता है, तो हम जरूर चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपके कवि रूप के दर्शन हमारे श्रोता कर रहे हैं, आपकी वो झलक मिले उनको। तो सर आज के कार्यक्रम के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
आपका भी बहुत बहुत
धन्यवाद, नमस्कार।